आज है 28 अक्टूबर दिन बुधवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। बिहार में तीसरे चरण की 50 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान।
भारतीय जनता पार्टी इस थर्ड फेज में एक रिलेटिवली बेटर स्थिति देख रही होगी। महाराष्ट्र गठबंधन यह महसूस करता है पिछले दो चरणों में उसने अच्छा किया है।
यूजीसी के नेट क्वालिफाई ना करने वालों की फेलोशिप बंद करने का विरोध करे डीयू के छात्रों ने। पुलिस पर लगाया बल प्रयोग का आरोप तो पुलिस ने कहा
लाठीचार्ज का कोई नहीं है एंड उन्होंने बल्कि इवन हमारे बैरिकेड वगैरह तोड़े हैं। पुलिस से मैन हैंडलिंग की है, लेडीज स्टाफ से की हमारे, तो उनको अभी एग्जामिन कर रहे हैं।
भूकंप के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों से राहत कोसों दूर। होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 6 जिलों की 50 सीटों पर अब से थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा। आज राजधानी पटना के अलावा सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में कुल 808 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 71 महिला उम्मीदवार हैं। अमरीका का कहना है कि सीरिया संघर्ष को लेकर बहुपक्षीय बातचीत में ईरान को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ये बातचीत गुरुवार से वियना में होगी। इसमें अमरीका और रूस के अलावा यूरोप और अरब देशों के आला प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ये साफ नहीं है कि ईरान इस बातचीत में शरीक होगा या नहीं। ईरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का करीबी सहयोगी है, लेकिन वो बहुपक्षीय शांति वार्ता में शामिल नहीं है। अमरीकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा है कि अमरीका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट पर हवाई हमले बढ़ाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि रक्का पर नियंत्रण के लिए इस्लामिक स्टेट से संघर्ष कर रही सीरिया की सेना को गठबंधन की ओर से और अधिक सैन्य मदद दी जाएगी। जरूरत होने पर जमीनी कार्रवाई भी की जाएगी। कार्टर ने कहा,
We've been clear for some time that we need to keep up pressure on Raqqa, and to that end, we will support moderate Syrian.
बीते कुछ वक्त से ये साफ है कि हम रक्का पर दबाव बनाए रखने की जरूरत है। हम IS से लड़ रही सीरिया की सेना की मदद करेंगे। IS ने रक्का के पास दखल बना लिया है। आज वो महज 30 मील की दूरी पर हैं। ये थे एस्टन कार्टर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सोमवार को महसूस हुए भूकंप के झटकों से प्रभावित हजारों लोग खुले में रहने के लिए मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली एजेंसी चिल्ड्रन फंड का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में से कुछ जगह तापमान काफ़ी कम है। ऐसे में खुले में रह रहे बच्चों और दूसरे प्रभावितों की जान पर खतरा हो सकता है। राहत में लगे अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में टेंट और कंबलों को तुरंत भेजने की जरूरत है। भूकंप के असर से दोनों देशों में 360 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डोमिनिकन रिपब्लिक ने कहा है कि वो ड्रग तस्करी के दोषी ठहराए जाने के बाद भाग निकले फ्रांस के दो पायलटों के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। पायलट पास्कल और ब्रूनो ओडोसो के विमान से पुलिस ने 26 सूटकेस बरामद किए थे, जिनमें करीब 700 किलोग्राम कोकीन थी। इसे लेकर उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां बस अब से कुछ ही मिनटों बाद तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। इस चरण में राजधानी पटना सहित 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे दमखम के साथ प्रचार किया और एक दूसरे पर निशाना साधा। इस चरण में जहां कई विवादास्पद नेता जैसे अनंत सिंह, कन्हैया सिंह और दद्दन यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ पटना से मनीष शांडिल्य।
जमीन से लेकर आसमान तक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब से थोड़ी देर में तीसरे चरण का मतदान शुरू होगा। दुर्गा पूजा, दशहरा और मुहर्रम जैसे त्योहारों के कारण दूसरे चरण के करीब दो हफ्तों बाद तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच दशहरे के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की कमान संभाली तो राहुल गांधी भी बिहार चुनाव में फिर सक्रिय हुए। दलों की बात करें तो एनडीए में भाजपा 34 जबकि महागठबंधन में राजद 25 और जदयू 18 सीटों पर ताल ठोक रही है। सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने की पूरी तैयारी का दावा करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी अजय नायक ने बताया,
वैसे सुरक्षा के जो हम लोगों ने प्रबंध किया है, जहां पर भी संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है वहां पर अधिक फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा दियारा एरिया है, सबके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था किया है, जैसे कि वहाँ पर मोटर बोट की व्यवस्था हो या माउंटेड पुलिस की व्यवस्था हो या मोटरसाइकिल के द्वारा निगरानी रखने का। कुल मिला के लगभग करोड़ लोगों को आउट ऑफ नियरली से 1.8 लाख करोड़ जो भी मतदाता है तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर स्लिप इश्यू कर रहे हैं। और अब की बार फोटो वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है, लगभग 95% के ऊपर है।
2010 के चुनाव में इन 50 में से 23 सीटें जदयू, 20 सीटें भाजपा और 7 सीटें राजद के खाते में गई थीं। इस चरण में लालू प्रसाद के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के अलावा जो प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें विधानसभा उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव, बिहार सरकार के दो मंत्री श्याम रजक और श्रवण कुमार, सांसद सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर और बहुचर्चित विधायक अनंत सिंह शामिल हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबले में माने जा रहे एनडीए और महागठबंधन की संभावनाओं के बारे में वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा बताते हैं,
ये थर्ड फेज के चुनाव में ज्यादातर अर्बन सीट्स हैं, तो अर्बन सीट्स होने के चलते न कि लंबे गैप होने के चलते भारतीय जनता पार्टी इस थर्ड फेज में एक रिलेटिवली बेटर स्थिति देख रही होगी। ऐसे जहां तक सवाल है महागठबंधन का, महागठबंधन यह महसूस करता है पिछले दो चरणों में उसने अच्छा किया है और उसे कंटिन्यूएशन होना चाहिए थर्ड फेज में।
चुनाव आयोग के मुताबिक पटना के अलावे आज जिन जिलों में मतदान होगा वहां बीते चुनावों में बिहार के अन्य हिस्सों के मुकाबले मतदाता कहीं ज्यादा तादाद में वोट डालने निकले थे। ऐसे में आयोग को आशा है कि आज मतदान का प्रतिशत 60% के आंकड़े को पार करेगा। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
तो अब से बस कुछ ही मिनटों बाद तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू होगा और हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव इस समय पटना में हैं। पटना में चलते हैं, सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं नितिन। नितिन, ये बताइए कि इस चरण में कई जगहों का आपने दौरा किया और 50 सीटों पर मतदान होना है। मोकामा, पटना साहिब, बक्सर में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली निकाली, राघोपुर जैसी कई अहम सीटें हैं इस चरण में।
बिल्कुल सुशीला, और ये चरण इसलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि ये ऐसा चरण है जिसमें पिछली बार जब चुनाव हुए थे विधानसभा तो तब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़े थे और उन्होंने, उन दोनों पार्टियों ने मिलकर इसमें पूरी इन 50 सीटों में समझिए करीब 43 सीटें जीती थी। अब वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बहुत दिलचस्प है देखना कि दरअसल किसके पास ज्यादा वोट मत मिलेंगे इस चरण में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के लिए ये जो तमाम शहरों का मनीष जिक्र कर रहे थे, आपने जिक्र किया अभी नालंदा, वैशाली, पटना, सारण, भोजपुर वगैरह, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद ये है कि वो थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो शुरुआत के दो चरण हुए उससे जदयू और जो महागठबंधन है उनको थोड़ी सी बढ़त है।
जी, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल है? अभी मतदान होने में चंद ही मिनट बाकी हैं, क्या लोग आना शुरू हो गए? क्योंकि दिल्ली में तो हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, वहां पर चुनावी गर्मी है, कैसा माहौल है?
यहाँ पर ये समझिए कि दिन में बहुत ज्यादा चुनावी गर्मी होने वाली है और यहाँ पे अभी हवा में जो है वो सर्दी का जो एहसास है, ठंडक का, वो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन पटना जो है वो उठ चुका है और हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं एग्जीबिशन रोड पर, यहाँ पर एक बूथ हमारे सामने है, अच्छे खासे सुरक्षा के इंतजाम है। हालांकि अभी मतदाता नहीं आए हैं मत डालने, लेकिन आसपास काफी हलचल है, रौनक है। चाय वाला सुबह से मैं देख रहा हूँ 20 मिनट से वो बनाए बड़े से पतीले में आज चाय बना रहा है, उसको भी उम्मीद है कि यहाँ पे चाय बहुत दिखने वाली है। थोड़ी दूर पे एक ठेला अभी आकर खड़ा हुआ है, वो लिट्टी चोखा लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ शाही लिट्टी चोखा वैशाली का। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आज चुनाव का रंग जो है वो पूरे पटना में दिन भर बिखरा रहेगा।
जी, और नजर बनाए रखें नितिन, आपके पास 8 बजे फिर लौटेंगे अपडेट के लिए। और अब दूसरी खबर पर रुक करते हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी उन वोट बैंकों पर जरूरत से ज्यादा आश्रित है जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दावा करते हैं। इसे देखते हुए एनडीए में मांझी की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। हमारे सहयोगी पंकज प्रदर्शी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की और पूछा कि पहले 2 चरणों में एनडीए का क्या कुछ दांव पर है।
हम कह सकते हैं कि फर्स्ट चरण जहां 49 सीट थे, एनडीए को कम से कम मिलेगा तो 32-33 सीट मिलने जा रहा है, और सेकंड चरण में जब हम 32 सीट पर लड़े हैं तो कम से कम एनडीए को 25-26 सीट मिलने जा रहा है, यानी 81 सीट में लगभग हम लोग 60 सीट प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए को 2/3 मेजोरिटी मिलने जा रही है आगामी चुनाव में।
सर, दूसरे चरण के बाद, 2 चरण के बाद कहा यह गया कि एनडीए में थोड़ा पैनिक है और एक स्ट्रेटजी मीटिंग भी हुई थी, तो क्या कोई रणनीति में बदलाव भी आया या पैनिक था ऐसा?
कोई पैनिक नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं वो कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, वो सेंटिमेंटल मुद्दा उभारना चाहते। और जैसे गोमांस की बात कर दिए, शैतान आता है इसकी बात कर दिए, डीएनए का मामला किया, आरक्षण का मामला किया, और अभी आप देख रहे हैं कि कहाँ जलाया गया एक बच्चा, उसके चलते जो बातें हुई जनरल बी के सिंह की बात है उसका एक मुद्दा बनाया। इसका मास पर बहुत कोई इफेक्ट है ऐसा है नहीं, लेकिन वो मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही सेंटिमेंटल मुद्दा बना करके आज तक वो लोग 25 साल सत्ता में रहे, वरना विकास का काम और विकास का नाम तो लेना नहीं चाहते हैं, अगर लेते भी हैं तो करते नहीं हैं। आप देखिएगा ये जो बिहार का चुनाव होगा ये चौंकाने वाला चुनाव होगा, जितना हम लोग आशा कर रहे हैं उससे ज़्यादा सीट मिलने वाली है।
जैसे वीके सिंह का आपने जिक्र किया, वीके सिंह के बारे में आपने भी मांग की थी कि उन्हें हटाया जाना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बयानबाजी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को थोड़ा संयम बरतना चाहिए?
हम मानते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने कहा, हालांकि
प्रधानमंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया आपको?
नहीं, कोई वैसी बात नहीं, हमने मीडिया के माध्यम से उनको कहवाया है, और जाहिर रही बात की बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने क्लारिफिकेशन किया कि भाई हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, और उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। खेद करना बड़ी बात, व्यक्त करना भी बड़ी बात है, सख्त परंपरा है, लेकिन घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण हुई है इसमें कोई शक नहीं, और वो घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। गलत काम है, सही बात है, नहीं होना चाहिए वैसे या नहीं बोलना चाहिए वैसे, मैं मानता हूँ, लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में जो इन लोग मुद्दा बनाया, मुद्दा बनना चाहिए विकास का, मुद्दा होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको भत्ता देना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए।
आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन आपने कई बार संकेत दिया है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी आपको तरजीह देते हैं और रैली में बगल में बिठाते हैं, इसका भी एक संकेत है?
वो संकेत को मैं संकेत नहीं मानता हूँ, वो दूसरे कारण से भी हो सकता है कि यदि उधर से अगर ऑफर आएगा कि जीतन मांझी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मांग नहीं होगी, हम उसका कैंडिडेट अपने को अभी नहीं मानते हैं।
राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, और ये भी कहा जा रहा है कि आफ्टर पोल आपकी एक महती भूमिका हो सकती है, तो क्या एक राजनीतिक परिदृश्य ये भी है क्या कि भविष्य में आप महागठबंधन की ओर भी जा सकते हैं, जनता दल यू की ओर?
पहले मैंने कहा एक बात को, उस पर आप गौर फरमाइए, कि जीतन मांझी इज द मैन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स देता है वो करता है, हमारी मान्यता है, जिस गठबंधन के लिए हमने काम किया है आज काम कर रहे हैं, हम उसकी मजबूती के लिए बात करेंगे।
बिहार का चुनाव चौंकाने वाला होगा, ये कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनसे बात कर रहे थे पंकज प्रियदर्शी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नेट क्वालिफाई न करने वालों को फेलोशिप बंद करने का विरोध कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। ऑक्यूपाई UGC के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसे केंद्र सरकार का हमला बताया है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने आंदोलन में शामिल छात्र सनी सिंह से इस बारे में बात की।
पिछले वीक से एक मूवमेंट चल रहा है जो नेशन वाइड स्वरूप लिया है, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट। एंड दिस इज अगेंस्ट दिस इश्यू दैट स्कॉलरशिप जो मिलता है एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट द्वारा उसको यूनिलैटरली विड्रॉ किया गया है. तो इससे रिसर्च करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, मतलब रिसर्च के लिए गवर्नमेंट स्टाइपेंड पे डिपेंड करते हैं. इस सवाल पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुली हो रहा है. पहले भी इस पे क्रैकडाउन किया गया लास्ट वीक, अरेस्ट की डिटेंशन किया गया, फिर मंडे से हम लोग दोबारा यूसी के बाहर बैठे हुए थे. तो अभी कल से लेके कल पूरी रात, आज पूरा दिन वहाँ हम लोग पीसफुली बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे. वहाँ पर फिर से लाठीचार्ज किया गया, लगभग 7-8 लोग बहुत बुरी तरह घायल हैं. और अभी जो है वो ये पुलिस कह रही है कि वो मतलब चार्जेस लगाएगी स्टूडेंट्स पर. ये सारे रिसर्चर्स हैं और चार्जेस लगाने का मतलब है कि यू नो दे हैव रियल इश्यूज इन देयर करियर.
क्या आप लोगों ने कोई किसी किस्म की तोड़फोड़ या हिंसा करने की कोशिश की थी?
पुलिस का अपना वर्जन है, पर कोई अगर वहाँ वेरीफाई करने जाए, मीडिया के लोग गए भी हैं, बैरिकेड्स एकदम जैसे थे वैसे हैं. पुलिस दिन से ही प्रोवोक करना चाह रही थी कुछ कुछ बोलकर हम लोग को तंग करते हुए. और हालांकि दिन भर संख्या चूंकि बड़ी थी वहां पर और काफी कार्यक्रम हो रहे थे इसीलिए पुलिस रुक रही थी. शाम जैसे ढली और थोड़ी संख्या कम हो गई, मीडिया और टीचर्स वगैरह सब वहां से चले गए, हम लोग 100 लोग ही थे, तब ये पुलिस की संख्या का एक बढ़ गई. जो 100 पुलिस थी वो 300 हो गई. प्रोवोकेशन ज्यादा हो गया, उसमें कुछ लोग जो है पुलिस के साथ आर्ग्यू करने लग गए बैरिकेड की तरफ. तो वहां से पुलिस ने लाठीचार्ज का एक्शन दे दिया, ये कहते हुए कि ये लोग बैरिकेड तोड़ना चाह रहे हैं. एक एक को गिरा गिरा कर 10-10 लोगों ने मारा है. एक हमारा फ्रेंड है जर्नलिस्ट अखिल कुमार, वो अभी LNDP अस्पताल में भर्ती है, उसके सिर पे इंजरी हुई है, उसका सीटी स्कैन चल रहा है. तो बहुत ही एकदम ब्रूटल कोल्ड ब्लड तरीके से अटैक हुआ है.
क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है?
अभी 40 लोग जो है जिनको डिटेंशन करके लाया गया था, अभी वो कहा जा रहा है कि नहीं ये लोग अरेस्ट हैं और इन पे चार्जेस लगेंगे.
क्या चार्जेस कह रही है पुलिस, किस तरह का चार्जेस?
हमसे बात ही नहीं कर रही, हम तो वही थाने के बाहर एक घंटे से खड़े हैं. हम लोग 60-70 लोग बाहर हैं और लोग आ रहे हैं, लेकिन हमसे बात करने का कोई यही नहीं किया, वो कोई ये मतलब तैयारी नहीं हमसे बात करने के लिए.
आप लोगों ने पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से या किसी और लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है?
टीचर्स वगैरह फोन कर रहे हैं कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के और कुछ सीनियर लोग, तो वो ठंडा आश्वासन तो दे रहे हैं बट कोई यहाँ आ नहीं रहा है बड़ा अधिकारी जो हमसे मिले. और इस तरह से कोई अभी इसमें डेवलपमेंट होता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हम इस लग रहा है कि यहाँ फिर हम एक बड़े प्रोटेस्ट में अभी जाएंगे. हमने कॉल दे रखा है DU JNU से, स्टूडेंट जो है वो दे आर ऑन द वे.
ये थे विरोध करे छात्र सनी सिंह. तो उधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि उल्टे छात्रों ने ही कानून हाथ में लेने की कोशिश की. दिल्ली पुलिस के DCP सेंट्रल आलोक कुमार से बात की हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने.
कोई गिरफ्तार नहीं किया गया अभी, जस्ट वहाँ से क्योंकि टेकिंग लॉ इन देयर हैंड्स, तो अभी वहाँ से लेके आए और अभी सारे फैक्ट वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग.
लेकिन उन पर बहुत तीखा लाठीचार्ज हुआ है?
नहीं हुआ है. कहाँ, किसने बताया? बस
ये स्टूडेंट से अभी हमारी बात हुई थी.
नहीं नहीं, स्टूडेंट नहीं क्या बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा लाठीचार्ज का कोई नहीं है. एंड उन्होंने बल्कि इवन हमारे बैरिकेड वगैरह तोड़े हैं, पुलिस से मैन हैंडलिंग की है, लेडीज स्टाफ से की हमारे, तो उनको अभी एग्जामिन कर रहे हैं सिचुएशन को.
अच्छा, लेकिन फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी स्टूडेंट्स की कुछ तस्वीरें जारी हुई हैं जिसमें उन पर काफ़ी चोटें दिखाई जा रही हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड स्टूडेंट्स भी हैं.
नहीं नहीं, कौन से हॉस्पिटलाइज हैं, मुझे नाम बताइए. कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है स्टूडेंट.
तो छात्रों का आरोप कि उन पर लाठीचार्ज हुआ तो पुलिस ने किया इनकार. ये थे दिल्ली पुलिस के DCP सेंट्रल आलोक कुमार. सोमवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए भूकंप में 360 लोग मारे गए हैं. अफगानिस्तान में 115 लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. देश के 9 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं और लोगों तक मदद और राहत सामग्री पहुंचाने और स्थिति का जायजा लेने के लिए कल एक आपात बैठक भी बुलाई गई. हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने काबुल में मौजूद पश्तो सेवा के सहयोगी सईद अनवर से पूरी जानकारी मांगी.
अफगान सदर हाउस से जो बयान जारी की गई है उसके मुताबिक 115 अफराद अफगानिस्तान के मुख्तलिफ प्रांतों में मारे गए हैं और 538 दीगर घायल हुए हैं. इस बयान के मुताबिक 7600 घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं और 17 स्कूलों के इमारतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है और ये तकरीबन 9 प्रांतों में ये कैजुअलिटी सामने आई है. कैबिनेट मीटिंग में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी ताकि जिन इलाकों में लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है वहाँ امدادی کام تیز ہو جائے. افغانستان کے وزارت صحت نے مختلف صوبوں میں جہاں کیجولٹیز اور زخمی زیادہ ہیں وہاں موبائل ٹیمیں بھیج دی ہیں, اور تاہم ابھی بھی ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں موبائل سروسز نہیں ہیں, اور یا ایسے بھی علاقے ہیں جہاں طالبان موجود ہیں وہاں افغان حکومت کی رسائی اتنی آسان نہیں ہے.
اس زلزلے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی کیا استھتی ہے؟
زلزلے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں سے جو تخار پرانت لڑکیوں کے اسکول میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, لڑکیاں بچیاں ہیں جن کی عمریں 8 سے 15 سال تک ہیں, ان میں سے 8-10 تک کے حالات بہت تشویشناک بتائی جاتی ہے. دوسرے علاقوں میں بہت تشویشناک گائلوں کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. زیادہ تر لوگ شیشوں کے ٹوٹنے سے یا دیوار گرنے سے زخمی ہوئے ہیں.
راحت کا کام میں کتنی مشکلیں ہیں؟
رفت و آمد کی امکان ہے وہاں تو مشکل زیادہ نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی سے صوبوں کے سطح پہ وہاں امداد رسانی کا کام شروع ہوا ہے. لیکن دو علاقوں میں شمالی پرانت بدخشان میں اور مشرقی پرانت کنڑ میں وہاں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں بہت دور افتادہ ہے اور وہاں گاڑی پہنچنا بھی اس سردی کے موسم میں آسان نہیں ہے, تو ان علاقوں تک امداد پہنچانا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ایک یا دو دن میں پہنچائے. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ایک دن تک پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. ان علاقوں میں کچھ مشکل پڑ جائے گی.
طالبان کے جو اسٹرانگ ہولڈ علاقے ہیں وہاں پہ کوئی دقت ویسی آ رہی ہے کیا راحت ایجنسیوں کو؟
طالبان نے تو بظاہر یہ کہا ہے کہ جو ایجنسیز زلزلے کے وکٹمز کی مدد کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تاہم اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو طالبان امداد رسان یا ایڈ ایجنسیز کے ورکروں پر حملے کیے ہیں, تو اتنے آسانی سے بھی ایڈ ورکر کے سٹاف ان علاقوں تک جانے کے لیے شاید راضی نہ ہوں.
تو افغانستان میں بھوکمپ میں 115 لوگوں کی موت. سندیپ رائے بات کر رہے تھے پشتو سیوا کے سہیوگی سعید انور سے. ادھر اس بھوکمپ کی وجہ سے دونوں دیشوں افغانستان اور پاکستان میں ہزاروں لوگ پربھاوت ہیں, اور ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ بنا بسیرے اور ٹھنڈ سے دوسری رات گزارنا ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. ایسے میں انہیں ٹینٹ اور کمبل کی ترنت ضرورت ہے. پاکستان میں راحت سہایتا پہنچائی جا رہی ہے, لیکن دور دراز کے علاقوں جیسے کیلاش گھاٹی میں قریب 5,000 لوگ بے گھر ہو گئے ہیں جنہیں سہایتا کی سخت ضرورت ہے. ہمارے سہیوگی نکھل رنجن نے امبر شمسی سے بات کی.
میں اس وقت ضلع سوات میں ہوں. ایک یہ ڈسٹرکٹ ہے جو کافی متاثر ہے, بہت افیکٹڈ ڈسٹرکٹ میں سے ہیں. یہاں 29 افراد جو ہیں مارے گئے ہیں اور 200 سے زیادہ جو ہیں زخمی ہیں. ہم نے کافی سوات کے علاقے یہاں شہر اور شہر سے دور بھی ہم پھرے. ہم دور ایک کوئی 45 منٹ شہر سے دور ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں دور دراز علاقے ہیں, کچے گھر ہیں اور یہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں. تو ان کے گھر جو ہیں بہت ان کو نقصان پہنچا تھا. دو گھر تو مکمل طور پر گر گئے تھے, باقیوں کو ایسا نقصان تھا کہ ان کو ڈر تھا کہ ذرا سی بارش ہوئی یا زلزلے کے جھٹکے اور پڑے تو گھر اس وقت بھی گر جائیں گے. بلکہ یہاں میں ایک ایسے شخص سے ملی جن کا ایک نواسا اور ایک نواسی دونوں مارے گئے تھے ملبے تلے گر کے, اور وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ گھر تو دوبارہ بن جاتے ہیں لیکن وہ بچے واپس نہیں آتے. ایک اور شخص ہے جن کا گھر کو کافی نقصان تھا, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے عمان میں 3 سال کام کیا تھا, محنت کی تھی, پیسے جوڑے تھے اور پھر یہ گھر بنایا, اور اب ایسا اس کا حال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے بنا دوں. تو وہاں تک حالانکہ جائزوں میں ان سے فوج کے کچھ اہلکار تھے, افیشل تھے جو بات چیت کر رہے تھے, لیکن ان کو مدد نہیں ملی, امداد نہیں ملی. وہاں بچے جو ہیں اپنی چارپائیاں باہر بچھا رہے تھے, رضائیاں ڈال رہے تھے کیونکہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے, اور وہ کھلے آسمان تلے سونے پہ مجبور تھے رات کو کیونکہ ان کے پاس کوئی نہ خیمہ تھا نہ سر چھپانے کی جگہ تھی. اس کے علاوہ میں یہاں جو ایک مرکزی بڑا سرکاری ہسپتال ہے وہاں بھی گئی تھی, اور وہاں کچھ یہ حال تھا کہ 200 مریض تھے وہاں, متاثرہ لوگ تھے, بالکل وارڈ بھرے ہوئے تھے دونوں, جو خواتین مردوں کے بھی اور جو خواتین کے وارڈ تھے. اور حالانکہ کافی لوگوں کو ڈسچارج بھی کر چکے تھے, ڈاکٹر ساری رات کام کرتے رہے تھے, اور وہی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, سر ٹانگ, بچے کافی مجھے نظر آئے تھے ان وارڈز میں. اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ کیونکہ آج ایسا دن تھا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کچھ امداد دور دراز علاقوں میں کہیں پہنچی تھی, لیکن سڑکیں بھی کھولی گئی تھیں.
جو راحت کا کام ہے, راحت ایجنسیاں ہیں, وہ کتنی مطلب کارگر طریقے سے جٹ گئی ہیں, کتنی مدد پہنچ پائی ہے لوگوں تک, اور کیا ایسے بھی علاقے ہیں جہاں ابھی کوئی نہیں پہنچا ہے؟
جی, جس علاقے میں میں ہوں یہاں کچھ ایسے علاقے بالکل ہیں, دو تین ہیں, ایک بحرین ہے, کلام ہے, ان تک مکمل طور پر امداد ابھی پہنچی نہیں ہے. دو چیزیں ہو رہی تھی, تو سرکاری رد عمل نظر آ رہا تھا, وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ بھی دورے کر رہے تھے, لیڈرز دی اپوزیشن عمران خان نے بھی یہاں بھی آئے تھے دورے کیے, پھر فوج کے کچھ اہلکار تھے جو یہاں آئے تھے, کیونکہ جس صوبے میں میں ہوں صوبہ خیبر پختونخوا یہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی پارٹی یہاں حکمرانی کر رہی ہے, تو یہ کام ہو رہا تھا, کچھ امداد پہنچ رہی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ زلزلہ ایسا تھا کہ شدت تو بہت ہی, اور شہر کو متاثر نہیں کیا لیکن بہت دور علاقے جہاں کہیں کہیں گھر ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں, اور یہ ایسے علاقے ہیں آپ کو معلوم ہے جہاں ڈاکٹر تک رسائی تو نہیں ہے, ڈاکٹر نہ ہسپتال ہیں نہ کلینک بھی نہیں ہوتے, تو یہ تھوڑا تھوڑا بھی جائزہ ہو رہا ہے کتنا نقصان ہوا ہے, ابتدائی کچھ معلومات حاصل ہوئی ہے لیکن مکمل طور پر اتنا نہیں پتا کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے اجتماعی طور پر.
تو پاکستان میں بھوکمپ کے بعد ہزاروں لوگ ہوئے بے گھر, راحت کا ابھی بھی ہے انتظار. نکھل رنجن بات کر رہے تھے امبر شمسی سے. اور اب سمے ہے سماچار پتروں کی سمیکشا کا. واتسلیہ اسٹوڈیو آ چکے ہیں. واتسلیہ
جی. سشیلا جی, آج اخباروں میں ایک خبر جو پرمکھتا سے دکھائی دے رہی ہے وہ ہے دلی کے کیرل بھون میں بیف پروسے جانے کی شکایت پر پولیس کے پہنچنے کا معاملہ. اس معاملے کو لے کر کیرل, دلی اور پشچم بنگال کے مکھیہ منتریوں نے اس کی نندا کی ہے, اس پورے معاملے کی. اسے ہی سارے اخباروں نے, زیادہ تر اخبار جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں, کہ لیڈ خبر اپنا بنایا ہوا ہے. نو بھارت ٹائمس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اخبار نے ہیڈنگ دیا ہے دلی میں بیف پر بھیجا فرائی. اسی طرح ٹائمس آف انڈیا نے بھی اسے ہی اپنی لیڈ خبر بنایا ہے اور ہیڈنگ دیا ہے کیرلا گورنمنٹ اینڈ ایم پیز روز ڈیلی پولیس اوور بیف ریڈ. ہندوستان نے بھی اسے لیڈ بنایا ہے اور ہیڈنگ دیا ہے کیرل بھون میں بیف پر وواد. اس کے علاوہ جو دوسری ایک بڑی خبر ہے وہ بہار چناؤ کے دوران مہا گٹھ بندھن اور این ڈی اے کے نیتاؤں کے بیچ میں جو تناتنی لگاتار بنی ہوئی ہے اسے بھی اخباروں نے پرمکھتا سے جگہ دی ہے. دا ہندو نے راشٹریہ جنتا دل کے پرمکھ لالو پرساد یادو کے ایک بیان کو ہیڈ لائن بنایا ہے جس میں لالو کہہ رہے ہیں وی ہیو پنڈ مودی ڈاؤن. اخبار نے لالو کے اپنی بیٹی میسا بھارتی کے ساتھ جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کی تصویر کو بھی لگایا ہے, اور ادھر جنستا نے پردھان منتری نریندر مودی کے ایک بیان کو ہیڈ لائن بنایا ہے لالو نتیش وشواس گھاتی کیسے کریں بہار بھروسہ, یعنی وہ ووٹرس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر کیسے بھروسہ کیا جائے. اسی طرح کرکٹر امت مشرا کل بنگلورو پہنچے تھے, ان پر ایک مہیلا کے ساتھ مار پیٹ کا آروپ ہے, تو اس خبر کو بھی اخباروں نے پہلے پنے پہ جگہ دی ہے. جنستا کی ہیڈنگ ہے امت مشرا گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا. اسی طرح انڈین ایکسپریس نے منگلوار کو سپریم کورٹ نے جو آرکشن کو لے کر کہا ہے اسے اپنی لیڈ خبر بنایا ہے. اخبار نے ہیڈنگ لگائی ہے ان نیشنل انٹرسٹ اسکریپ کوٹا ان ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس. اسی طرح ٹائمس آف انڈیا نے مانو سنسادھن منترالے کے دخل کے خلاف آئی آئی ٹی دلی کے 6 میں سے 3 ڈین نے جو استعفیٰ دینے کی دھمکی دی ہے اس خبر کو اپنی سیکنڈ لیڈ خبر بنایا ہے. ہندوستان نے گیتا جو پاکستان سے لوٹی ہیں سوموار کو ان کی خبر کو دیا ہے کہ ان پر ایک اور پریوار نے دعویٰ کیا ہے, اور جکر برگ جو اس سمے بھارت میں ہیں وہ دلی میں آج ٹاؤن ہال کریں گے. اسے دینک جاگرن نے اپنی اینکر خبر بنایا ہے.
جی, بہت بہت شکریہ سماچار پتروں کی اس وستھرت سمیکشا کے لیے. اور اب سن لیتے ہیں مکھیہ سماچار.
بی بی سی سماچار. بہار ودھان سبھا چناؤ کے تیسرے چرن میں 6 ضلعوں کی 50 سیٹوں پر اب سے کچھ دیر میں مدان شروع ہوگا. امریکہ کا کہنا ہے کہ سیریا سنگھرش کو لے کر بہو پکشیہ بات چیت میں ایران کو بھی آمنترت کیا جا سکتا ہے. یہ بات چیت گروار سے وینا میں ہوگی. امریکی رکشا منتری ایشٹن کارٹر نے کہا ہے کہ امریکہ کی اگوائی والی گٹھ بندھن سینا سیریا اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ پر ہوائی حملے بڑھائے گی. افغانستان اور پاکستان میں سوموار صبح محسوس کیے گئے بھوکمپ کے جھٹکوں سے پربھاوت ہزاروں لوگ کھلے میں رہنے کے لیے مجبور ہیں. डोमिनिकन रिपब्लिक ने कहा है कि वो ड्रग तस्करी के दोषी ठहराए जाने के बाद भाग निकले फ्रांस के दो पायलटों के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। और बिहार में तीसरे चरण के लिए मतदान बस शुरू होने वाला है। विश्व भारती में चलेंगे पंकज प्रदर्शी और नितिन श्रीवास्तव के पास। 8 बजे तक दीजिए इजाजत।